छोड़िए, अब हमें हॉस्पिटल जाना है, आरवी अयान से दूर होते बोली, जिसने उसे काफी देर से बाहों में भर रखा था। अयांश ने फौरन अपनी हैंडवॉच की ओर देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये देखकर आरवी हंस दी। पसंदीदा शख्स साथ हो तो वक्त की गति तेज प्रतीत होती है, बाकी वक्त अपनी रफ्तार से है ही है, न तेज न धीमा। ये सुन अयांश मुस्कुरा दिया। तुम्हारे साथ जितना भी वक्त बिता लूं कम ही लगता है, इतना कह प्यार से वो आरवी का माथा चूम लेता है। आरवी आइसक्रीम वाला बॉक्स उठाकर आइसक्रीम खाने लगी। मिस्टर मेहरा, आपका बस चले तो आप ना हमें एक पल भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दें। मैं ऐसा कर भी सकता हूँ वाइफी, अयांश ने जिस अंदाज और लहजे में ये कहा, आरवी की भौहें चढ़ गई और उसके मुंह से एक ही नाम निकला, माई डेविल हस्बैंड। ये सुन अयांश तिरछा मुस्कुरा दिया। आरवी उसे घूरते आइसक्रीम बॉक्स टेबल पर छोड़ टेबल से उतरकर उसे बाई बोल यहां से जाने लगी। अयांश ने उसकी कलाई पकड़ ली। आइसक्रीम तो खाकर जाओ, भर गया पेट भी मन भी। तुम ठीक हो? हम नाराज हैं। नाराज? बहुत समझदार है ना आप, समझ लीजिए हम क्यों नाराज हैं आपसे। इतना कहे आरवी अयांश से हाथ छुड़ाकर वहां से चली गई। अयांश की नजरें बस उसे जाते देखते रह गई। जैसे ही वो आंखों से ओझल हुई वो बोल पड़ा, समझ गया, अच्छा नहीं लगा तुम्हें मिस रायचंद का मुझे टच करना। जो मेरी वाइफी को पसंद नहीं वो अयांश मेहरा को कैसे पसंद आ सकता है। इसी के साथ अयांश के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने अपना फोन निकाला और मिस्टर रायचंद को कॉल लगाया। मिस्टर रायचंद ने जैसे ही कॉल को रिसीव किया, अयांश ने उन्हें कुछ ऐसा कहा कि मिस्टर रायचंद की आत्मा कांप उठी। उनके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर पड़ा और वो सिर पकड़कर धम से चेयर पर बैठ गए। उनकी ये हालत देख उनके मैनेजर राजेश फौरन उनके पास आए। क्या हुआ सर? वो कुछ कहते तभी डैड कहते रिद्धिमा वहां आ गई। उसको देखते ही मिस्टर रायचंद चेयर से उठ खड़े हुए और उसकी ओर बढ़े। कहाँ गई थी तुम? वो कुछ कहती मिस्टर रायचंद ने उसे बाहों से पकड़ा। कितनी बार समझाना पड़ेगा रिद्धिमा तुम्हें, समझती क्यों नहीं? अयांश मेहरा से दूर रहो, प्लीज दूर रहो, मत जाओ अयांश के पास में। जितना दूर रहोगी बेटा सेफ रहोगी। पहले ही तुम कितनी सारी गलतियां कर चुकी हो जिसकी भरपाई हम चाहकर भी नहीं कर सकते। जो बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। बिजनेस से बहुत लॉस हुआ है हमें, अब और नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे हम मुसीबत में फंस जाएं। मैं इंडिया तुम्हें इसलिए नहीं लेकर आया था, तुम्हें जो तुम ये दिन दिखाओ मुझे। जिनसे दोस्ती करनी थी ना उनसे दुश्मनी कर बैठी हो तुम, जिसके चलते पूरे रायचंद ग्रुप्स को भुगतना पड़ रहा है। कितना समझाया था मैंने, कुछ भी ऐसा मत करना जो सही ना हो, बट तुम हो जो समझने का नाम ही नहीं ले रही हो। आखिरी बार समझा रहा हूँ, अयांश से, संयम से, विनित से दूर रहो, एंड अयांश की वाइफ से भी, वरना कुछ ऐसा हो जाएगा जो तुमने इमेजिन भी ना किया हो। ये सुन रिद्धिमा ने गुस्से से दांत फींच लिए और अपने डैड की डांट सुन उसी पल वहां से चली गई। मिस्टर रायचंद आह भर लेते हैं, ये लड़की समझ क्यों नहीं रही है? मैनेजर राजेश, सर रिद्धिमा मैम जितनी जल्दी समझ जाएं वही ठीक है। सच में सर, अयांश मेहरा से दुश्मनी मोल लेना अच्छी बात नहीं है। अभी वो शांत है इसका ये मतलब नहीं वो हमेशा ऐसे ही रहे। मिस्टर रायचंद अयांश के बारे में सोचते हुए, जानता हूँ सोया हुआ शेर खतरे से खाली नहीं होता। अयांश की बात ना मानना, उसके खिलाफ जाना, उसके साथ दुश्मनी करना सड़क पर आने जैसा है। इतना ही नहीं, जान पर भी खतरा, और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी को कुछ हो। मैं रिद्धिमा को खोना नहीं चाहता, खुद समझ जाए तो बेहतर है। दूर रहे अयांश से, उससे जुड़े लोगों से, अच्छी बात है, वरना मैं रखूंगा दूर। एक ऐसे बंदे को हायर करो जो रिद्धिमा पर नजर रखे, उसे पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। रिद्धिमा की सिक्योरिटी के साथ साथ वो अयांश मेहरा से दूर रहे, इस बात का ध्यान अब मुझे ही रखना होगा, वरना मुझे वो दिन देखना पड़ेगा जिसकी धमकी अयांश ने अभी अभी मुझे दी है। सब बर्बाद कर देगा वो, सब बर्बाद। सच में अयांश, आज जो भी हालत की आरवी ने उस शूपूर्णखा की, मजा आ गया। विनित खुश होते जोर से बोला। विनित अयांश के केबिन में सोफे पर बैठा था और अयांश अपनी चेयर पर। विनित की बात सुन अयांश ने विनित की ओर देखा। तुम्हें कैसे पता? ये सुन विनित की खुशी उसी पल फुर हो गई। वो कुछ कहता तभी तरुण वहां पर आ गया। मे आई कम इन सर? अयांश दरवाजे पर खड़े तरुण को यस कहता है। तरुण फौरन अंदर चला आया। उसके अंदर आते ही अयांश चेयर से उठ खड़ा हुआ। तुमने बताया इसे? विनित की ओर इशारा करते। आज ऑफिस में जो हुआ, ये सुन तरुण विनित की ओर देखता है। विनित अब अपना सिर खुजा रहा था। मरवा दिया विनित सर, तुमने? तरुण मन ही मन बोला। विनित मन ही मन, सॉरी सर। अयांश तरुण की तरफ आने लगा। तरुण ने डर के मारे थूक कटक लिया और अपनी नजरें भी झुका ली। अयांश तरुण के पास आकर कुछ भी बोलता उससे पहले विनित दोनों के बीच आ खड़ा हुआ और तरुण को ऑर्डर देते बोला, तरुण मैंने तुमसे एक फाइल मांगी थी, कहाँ है वो फाइल? तरुण हैरान होते। फाइल? विनित उसे आंखों से कुछ और इशारा करता है और जुबान से कुछ और बोलता है, हाँ वो ब्लैक फाइल, वो फाइल मुझे अभी चाहिए, जाओ लेकर आओ। तरुण समझ गया विनित उसे अयांश से बचा रहा है, वहां से जाने को कह रहा है, पर उसमें इतनी हिम्मत कहाँ जो वो अपने बॉस के सामने से हिल भी पाए। वो फिर भी वहीं खड़ा रहा। आखिरकार विनित को ही उसे केबिन से बाहर निकालना पड़ा। जाओ जल्दी फाइल लेकर आओ, बोल विनित ने केबिन का दरवाजा बंद कर दिया। तरुण ने केबिन से बाहर आकर सांस ली, बच गया। उसकी नजर हाथ में मौजूद फाइल पर गई। बॉस को ये फाइल देनी थी, बाद में, अभी नहीं, अभी खतरा है, बोलते वो वहां से भाग गया।
केबिन के अंदर विनित ने अयांश की ओर देखा, जो उसे अजीब तरह से घूर रहा था। अयांश को घूरता पाकर विनित बत्तीसी दिखाते हुए अयांश के पास चला आया। तरुण ने नहीं बताया मुझे कुछ भी, सच्ची जाने मन। माना मैं इस ऑफिस में नहीं था उस वक्त, पर रहता तो यहाँ भी हूं ना मैं। मेरा मन सब अभी भी यहीं रहते हैं, बस शरीर दूसरे ऑफिस में जाता है। सारी की सारी खबर रखता हूँ मैं यहाँ की, कौन काम कर रहा कौन नहीं काम कर रहा, क्या काम चल रहा है यहाँ, और कैमरे भी लगे हुए हैं ना यहाँ ऑफिस में, कैमरे पता है ना तुम्हें। मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी, बस उससे ही पता चला जो आज यहाँ हुआ, और किसी से नहीं। वो बोल रहा था कि अयांश बोल पड़ा, मैं बेवकूफ हूँ। विनित बोलते बोलते एक पल को रुक गया और दूसरे पल मुस्कुराते बोला, बेवकूफ, और तुम कभी नहीं। तुम कहाँ बेवकूफ हो, तुमसे बेहतर तुमसे जानता हूँ, झूठ बोल रहे हो या सच सब पता रहता है मुझे। ये सुन विनित ने आह भर ली। हम ये तो है, सब कुछ पता रहता है तुम्हें। सॉरी, बट प्लीज तरुण जी को कुछ मत कहना, चाहो तो मुझे सजा दे देना। आज तो सजा भी चलेगी मुझे, दुगुनी चौगुनी। बहुत बहुत खुश जो हूँ मैं, वजह तुम जानते ही हो, है ना। मिस रायचंद, मिस रायचंद नहीं, सुपूर्णखा बोला करो उसे, कितनी बार कहा है। वो नहीं, उसके साथ जो हुआ, जो डिजर्व करती है वो, जिसके लायक है वो। मैं तो कहता हूँ हम ना ऑफिस के बाहर उसके लिए नो एंट्री का बोर्ड ही लगवा देते हैं। ऑफिस के बाहर क्या, जहाँ हम जाएं हर उस जगह उसका आना जाना नहीं होना चाहिए। ना तो अब मुझे उसकी शक्ल पसंद है और ना ही जिक्र। तो क्यों कर रहे हो उससे जुड़ी बात? कहाँ कर रहा हूँ, मुझे शौक भी नहीं उसके बारे में बात करने का। हम तो आरवी के बारे में बात करेंगे। वाइफी के बारे में? हाँ, आरवी से बात हुई थोड़ी देर पहले, पता चला वो तुमसे नाराज है। हम नाराज है? वो भी झूठी नाराज। झूठी सच्ची क्या होती है जाने मन। बीवी की नाराजगी नाराजगी होती है, पति का तो फर्ज होता है रूठी हुई पत्नी को मनाना, और जब बीवी आरवी जैसी प्यारी हो तब तो एक बार क्या 100 बार भी मनाना पड़े तो कम ही है, तुम्हें बड़ा पता है।
हाँ, तो नॉलेज नाम की भी चीज होती है, मुझे ना सब पता है। आज नहीं पर कल तो मेरी भी बीवी होगी ना, जिसे मैं भी मनाऊंगा। वो मुझसे रूठेगी, कभी सच में तो कभी जानबूझकर, नॉलेज काम आएगी ना। विनीत मन मन मुस्कुराते थोड़ा शर्माते बोला। उसकी इस हरकत पर अयांश ने ना में सिर हिला दिया और वापस अपनी चेयर पर जा बैठा। विनीत उसकी ओर आते, तुम मेरा छोड़ा, तुम्हें आरवी को मनाना है, वो भी बहुत अच्छे से। अरे जाने मन, आरवी का तुमसे रूठना हक है, उस हक को अच्छे से अदा करो ना, जाओ उसे मनाओ। और आज तो बनता है यार रूठी बीवी को मनाना, उसके पति को किसी पराई स्त्री ने छुआ है। माना वो समझदार है, जानती भी है गलती किसकी थी, पर हुआ है ऐसा, बुरा भी लगा है उसे, वो बताए ना बताए ये उस पर। तुम तो समझते हो ना सब, जब तुम्हें आरवी पर किसी और की नज़र तक बर्दाश्त नहीं, तो तुम्हें तो उस सुपुर्णखा ने एक पल रुककर, खैर सच कहूँ, आज अगर आरवी सच में तुमसे नाराज़ हो तो भी गलत नहीं, और तुम्हें उसको सॉरी बोलना पड़े तो ये भी गलत नहीं होगा। आखिर जहाँ प्यार एक समान है वहाँ हक भी तो बराबर है ना। जाओ अयांश, मना लो उसे, इंतज़ार में है वो, तुम कब उसे मनाओगे। ये सुन अयांश के सामने आरवी का चेहरा आ गया, वो चेहरा जिस पर मुस्कुराहट तो थी पर आंखों में हल्की सी उदासी भी थी। मैं मना लूंगा उसे, मना लूंगा क्रमशः।